आदा, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के नहीं मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। उन्होंने पाकिस्तान को अफरा तफरी का आलमी मरकज करार दिया और इस्लामाबाद पर जोर दिया कि दहशतगर्दी की एयानत करना बंद कर दे। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों ने आजाद तजारती माहदे के मुजाकरात का आगाज किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में बोडोलैंड की तरक्की के तई मरकज के अहद का इरादा किया है। उन्होंने शिमाल मशरकी रियासतों में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज से मुतालिक गुवाहाटी में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इंतहाई मतलूबा लश्कर तैयबा के दहशतगर्द और 26/11 के असल सरगना हाफिज सईद के करीबी साथी अबू किताल को पाकिस्तान में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। शिमाली मैकडोनिया के एक नाइट क्लब में लगी आग में कम से कम 59 अफराद हलाक और 155 से ज्यादा जख्मी हो गए। और भारत ने 8 सोने के तमगे समेत 33 तमगों के साथ इटली में खसूसी ओलंपिक आलमी विंटर गेम्स का दौरा मुकम्मल कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जब कभी भारत अमन की बात करता है तो दुनिया उसकी बात ध्यान से सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की सरजमीन है। एआई मुहक्किक और अमरीका में मुकीम पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत गैर जानिबदार ही नहीं बल्कि अमन के तई मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। उन्होंने कहा कि भारतीय अवाम हम आहंगी के कायल और अमन के अलमबरदार हैं। रूस यूक्रेन तसादुम से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तसादुम का हल इसी वक्त निकलेगा जब दोनों मुल्क मुजाकरात के लिए तैयार होंगे।
दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है, और टेबल पे परिणाम तब निकलेगा जब उस टेबल पर यूक्रेन और रशिया दोनों मौजूद होंगे। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठ करके कितनी माथापच्ची कर ले, उसे परिणाम नहीं आता है। दोनों पक्षों का होना जरूरी है।
पाकिस्तान के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि तकसीम के बाद पाकिस्तान ने एक हम आहंग बकाए बाहम को फरोग देने का रास्ता नहीं चुना बल्कि भारत के खिलाफ दरपरदर जंग का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सवाल किया कि खुरेजी करने और दहशतगर्दी फैलाने की क्या मंतिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तान पर जोर देता रहा है कि वो दहशतगर्दी की एहनत करना तर्क कर दे।
दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे इस रास्ते से किसका भला होगा, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा।
जनाब मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमन की हर कोशिश का नतीजा अदावत और दुश्मनी की सूरत में जाहिर हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान अकलमंदी से काम लेगा। उन्होंने ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अवाम इस्तेहकाम चाहते हैं उम्मीद जाहिर की कि वो अमन की राह का इंतखाब करेगा। भारत चीन ताल्लुकात से मुतालिक जनाब मोदी ने वाजे किया कि दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर किसी न किसी तरीके से आलमी बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली सदियों में भारत और चीन के दरमियान का तसादुम की कोई तारीख मौजूद नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात मुस्तकबिल में जारी रहेंगे। जनाब मोदी ने वाजे किया कि पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात जरूर होते हैं, नीज वक्ती गैर इत्तेफाकी तो पेश आती ही है।
हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं डायलॉग इसी पर बल देते हैं। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई, लेकिन अभी राष्ट्रपति शी के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें अब नॉर्मल से आ चुकी है।
वजीर आजम ने दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टियों में से एक पार्टी होने पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात के लिए 98 करोड़ इंदराज शुदा राय दहिंदगान थे, जो तादाद में शिमाली अमरीका की मजमूई आबादी से दोगुना है। उन्होंने बताया कि भारत में 2500 सियासी पार्टियां हैं, जबकि 900 से ज्यादा 24 घंटे खबरें फराहम करने वाले चैनल्स हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि ये सब अपने अपने तरीके से जमहूरियत की बालादस्ती कायम रखने में अपना रोल अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के इंतखाबी कमीशन ने आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए आलमी पैमाने पर एक मिसाल कायम की है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 दिन के दौरे पर आज तीसरे पहर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके हमरा आला सतह का एक वक्त भी है, जिसमें वुजरा, सीनियर अहदेदारान, सरकर्दा कारोबारी अफराद, मीडिया और वहां मुकीम भारत नजाद बिरादरी के अफराद शामिल हैं। हवाई अड्डे पर वजीर आजम लक्सन का खैर मकदम माही गिरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर ममलकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का इहाता किया जाएगा। वो राष्ट्रपति भवन जाकर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड ने एक जामे और बाहमी फायदे के आजाद तजारती माहदे FTA के मुजाकरात के आगाज का ऐलान कर दिया है। आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के वजीर तिजारत और सरमायाकारी टॉड मैकक्ले के दरमियान हुई मीटिंग से इस अहम कदम की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि ये दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और इक्तसादी मौकों को वसत देने के मुश्तरका विजन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि बाहमी तिजारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 की मुद्दत के दौरान ये $1 अरब से तजावुज कर गया है। एक रिपोर्ट।
FTA मुजाकरात का मकसद कारोबार और सारिफिन के लिए नए मौके पैदा करना है, जिससे भारत और न्यूजीलैंड की बाहमी तरक्की और खुशहाली को फरोग हासिल होगा। मुजाकरात का मकसद सप्लाई चेन के इंजमाम और बाजार तक रसाई को बेहतर बनाते हुए मुतवाजन नतायज हासिल करना है। ये संग मील एक मजबूत इकतसादी शराकत दारी, लचकदारी और खुशहाली को फरोग देने के मुश्तरका विजन की अक्कासी करता है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान देरीना शराकत दारी है, जिसकी बुनियाद मुश्तरका जमहूरी अकदार, अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और इक्तसादी हम आहंगी पर रखी गई है। दोनों मुल्कों ने तिजारत और सरमायाकारी पर मुश्तमिल अपने दोतरफा ताल्लुकात की तामीर के लिए मुसलसल काम किया है। आनंद कुमार और सुपर्णा साइका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बोडोलैंड की तरक्की के तई मरकज के अहद का एक बार फिर इदा किया है। जनाब शाह आज तीसरे पहर कोकराझार जिले में दोतमा के मकाम पर ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की 57वीं साला कॉन्फ्रेंस में मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने शिमाल मशरकी रियासतों में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज से मुतालिक गुवाहाटी में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने पटना जिले के दानापुर इलाके में एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली होनहार तालिबा खुशबू कुमारी की मदद का अज़्म किया है। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाली खुशबू के वालिदैन ने माली मुश्किलात की वजह से इसका दाखिला आर्ट्स स्ट्रीम में करा दिया था। एक मीडिया इंटरव्यू में उसकी हालत जाहिर के वायरल होने के बाद मरकजी वजीर को मुदाखलत करना पड़ी। आकाशवाणी से बात करते हुए खुशबू ने कहा कि मरकजी वजीर की यकीन दहानी के बाद उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। उसने कहा कि उसके स्कूल का जमाना भी बहुत दुश्वार गुजार रहा, क्योंकि हितनपुर दयारा गांव का इलाका गंगा नदी से घिरा है और कई महीने तक सैलाब की जद में रहता है। इलोन मस्क SpaceX ड्रैगन का अमला भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 11:05 पर खलाई स्टेशन और खलाई जहाज के दरमियान दरवाजा खोलने के कुछ वक्त बाद ही बैनल अक्वामी खलाई स्टेशन ISS में दाखिल हो गया है। उन्हें मुहिम 72 के अमले के अफराद ने खुशामदीद कहा, जिनमें नासा की खलाबाज भारत नजाद अमरीकी सुनीता विलियम्स शामिल हैं। इस मिशन के साथ सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर जमीन से महज एक कदम के फासले पर हैं और वो 9 महीने तक मदार में रहने के बाद जल्द ही वतन आने वाले हैं। विलमोर और विलियम्स ने शुरू में उस वक्त 1 हफ्ते के मिशन की मंसूबाबंदी की थी, जब उन्होंने बोइंग पर सवार होकर पहली खला प्रवास का आगाज किया था। लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द अबू किताल, जो किताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता था, पाकिस्तान के जहलुम सिंध खित्ते में मारा गया है। उसे गुज़श्ता रात नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। अबू किताल एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था, जो जम्मू कश्मीर में होने वाले मुतअद्दिद हमलों की मंसूबाबंदी में भी शामिल था। وہ 26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملے کے سرغنہ حافظ سعید کا قریبی ساتھی تھا اور پیپلز اینٹی فاسسٹ فورس پی اے ایف ایف اور ریسسٹن فورس ٹی آر ایف نامی ذیلی دہشت گردانہ تنظیموں کی قیادت کرنے میں بھی ملوث تھا۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے نوشکی کے مقام پر N40 شاہراہ پر فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس پر کی گئی زبردست گولی باری میں کم سے کم 12 پاکستانی فوجی ہلاک اور 26 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ بی ایل اے نے اس فوجی قافلے پر جان لیوا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک فوجی عملے کے کم سے کم 90 افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ بی ایل اے کے اس حالیہ دعوے پر ابھی تک پاکستانی حکام نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ چین نے پاکستان کو جدید ترین ہتھیاروں اور سینسروں سے لیس ایک دوسری نئی آبدوز فراہم کی ہے جو اس کے موسمیاتی ساتھی کی بحریہ کی بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں بڑھتی ہوئی موجودگی کو مستحکم کرنے کی اس کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ یہ چین کی جانب سے پچھلے چند برسوں میں پاکستان کو 4 جدید بحری جہاز فراہم کرنے میں ایک اور اضافہ ہے جو پاکستان کی بحریہ کی قوت کو مستحکم کرنے کی اس کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بیجنگ میں سرکاری میڈیا نے کہا کہ یہ ہینگر کلاس آبدوز پاکستان کو اسی طرح کی 8 آبدوز فراہم کرنے کا ایک حصہ ہے جو تقریباً 5 ارب امریکی ڈالر کے ایک معاہدے کے مطابق ہے۔ اس کا آغاز چین کے ہوبئی صوبے کے ووہان میں کیا گیا تھا۔ خبروں کا یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شمالی مقدونیا میں آج صبح سویرے کوکانی قصبے کے ایک نائٹ کلب میں شدید آگ لگنے سے کم 59 افراد ہلاک اور 155 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق کم سے کم 1500 افراد اس کلب میں ایک ہپ ہاپ ڈوو مقبول بینڈ ڈی این کے ایک کنسرٹ دیکھ رہے تھے۔ وزیر داخلہ پینس ٹوسکوفسکی نے بتایا کہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ آگ پائرو ٹیکنک آلات میں ہوئے اسپارک کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ آگ چھت میں لگ گئی جو آتشگیر مادے سے بنی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ آگ پورے کلب میں پھیل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں کچھ گرفتاریاں کی گئی ہے۔ وزیراعظم رستیجن مکسوسی نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ سرکار پوری طور پر حرکت میں آ گئی ہے اور اس آگ سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گی، نیز اس المیہ کے پیش آنے کی وجہ سے اس کا پتہ لگائے گی۔ بھارتی کھلاڑیوں نے اٹلی کے ٹیورن میں خصوصی اولمپک عالمی ونٹر گیمز میں سونے کے 8، چاندی کے 18 اور کانسے کے 7 تمغوں سمیت 33 تمغے حاصل کر کے اپنی مہم مکمل کر لی ہے۔ کل آخری دن بھارت نے 9 تمغے حاصل کیے۔ یہ خصوصی اولمپک ونٹر گیمز کا 12th ایڈیشن تھا جو 8 سال کے طویل انتظار کے بعد منعقد ہوا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ اٹلی نے خصوصی اولمپک عالمی گیمز کی میزبانی بھی کی ہے۔ بین الاقوامی ماسٹرز لیگ T20 کرکٹ میں رائے پور میں شہید ویر نارائن سنگھ بین الاقوامی اسٹیڈیم میں برائن لارا کی قیادت والی ویسٹ انڈیز ماسٹرز سچن تندولکر کی قیادت والی انڈیا ماسٹرز کے خلاف کھیلتے ہوئے آخری خبریں ملتے تک 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 148 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز ماسٹرز نے ٹاس جیتا اور بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ پہلے سیمی فائنل میں انڈین ماسٹرز نے آسٹریلین ماسٹرز کو 94 رن سے ہرایا تھا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز ماسٹرز نے سری لنکا ماسٹرز کو 6 رن سے شکست دی تھی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آسام میں بوڈولینڈ کی ترقی کے تئیں مرکز کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے شمال مشرقی ریاستوں میں 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ سے متعلق گوہاٹی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت صرف غیر جانبدار نہیں بلکہ امن کے تئیں مکمل طور پر عہد بند ہے۔ انہوں نے پاکستان کو افراتفری کا عالمی مرکز قرار دیا اور اسلام آباد پر زور دیا کہ دہشت گردی کی اہانت کرنا بند کر دے۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن بھارت کے 5 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کا آغاز کیا۔ انتہائی مطلوب لشکر طیبہ کے دہشت گرد اور 26/11 کے اصل سرغنہ حافظ سعید کے قریبی ساتھی ابو قتال کو پاکستان میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔